एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे विषय में कह सकते हैं गोता लगा रहे हैं जो हम सबके लिए बहुत निजी है।
हाँ, पर शायद हम उस पर इस तरह सोचते नहीं है अक्सर।
सही कह रहे हैं, हमारी लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी।
बिल्कुल, अक्सर लगता है कि ये तो बस है, यू नो, प्राकृतिक है, अंदरूनी है, शायद जन्म से ही तय।
हाँ, लगता तो यही है, लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? मतलब हमारी इच्छाएं, हमारी पहचाने, जैसे हम खुद को गे, स्ट्रेट, बाइसेक्सुअल या कुछ और समझते हैं, क्या ये सब बस बायोलॉजिकल है?
यही वो बड़ा सवाल है जिसकी पड़ताल हम आज करेंगे,
और इसके लिए हम सहारा ले रहे हैं वेरोनिक मोटियर के काम का। उनकी किताब है सेक्सुअलिटी द की कॉन्सेप्ट्स,
और कुछ और लेख भी हैं उनके।
हाँ, जो इस पहेली को सुलझाने में मदद करते हैं कि जिसे हम अपनी लैंगिकता कहते हैं वो असल में समाज, इतिहास और अशक्ति के धागों से कैसे बुनी गई है।
और ये समझना आज बहुत जरूरी हो गया है ना।
बिल्कुल, आजकल पहचान की राजनीति, LGBTQ+ अधिकार, रिश्तों की बदलती परिभाषाएं, ये सब बातें कितनी हवा में है।
सही बात है।
तो ये जानना कि हमारी सोच बनती कैसे है, इन बहसों को समझने में शायद मदद करेगा।
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर।
तो पहले जरा वेरोनिक मोटियर से मिलवाते हैं, ये है कौन और क्यों इनकी बात सुनना अहम है?
देखिए, वेरोनिक मोटियर राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र और जेंडर स्टडीज की एक जानी मानी प्रोफेसर है। उन्होंने लुजान विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे बड़े संस्थानों में पढ़ाया भी है, पर उनकी खास बात ये नहीं कि वो कहाँ पढ़ाती हैं।
नहीं, बल्कि ये है कि वो लैंगिकता को देखती कैसे है।
एग्जैक्टली।
हाँ,
वो इसे सिर्फ शरीर या मन का मामला नहीं मानती।
अच्छा।
नहीं, बल्कि एक राजनीतिक समाजशास्त्री होने के नाते उनका जोर इस बात पर है कि कैसे लैंगिकता समाज में जो पावर डायनामिक्स हैं, जो नियम बनते हैं, और कैसे लोगों को कंट्रोल किया जाता है, उसका एक तरह से मैदान बन जाती है।
मतलब ये सिर्फ बेडरूम की बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये पब्लिक भी है, पॉलिटिकल भी है।
और उनके काम पर फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फूको का गहरा असर दिखता है।
हाँ, फूको के विचार तो बहुत जरूरी हैं ये समझने के लिए कि लैंगिकता समाज में कैसे बनाई जाती है।
सही कहा। मोटिये फूको के कुछ मुश्किल लगने वाले आइडियाज को लेती हैं और उन्हें लैंगिकता के अध्ययन पे लागू करके, मतलब थोड़ा आसान बनाती हैं।
बिल्कुल, और उनका यही नजरिया लैंगिकता को इतिहास और शक्ति के आईने में देखना उनके विश्लेषण को बहुत दमदार बनाता है।
वो हमें उन चीजों पर सवाल उठाना सिखाती हैं जिन्हें हम बस मान लेते हैं कि ये तो नेचुरल है, प्राकृतिक है।
तो फिर मोटियर का मुख्य आइडिया क्या है, अगर एक लाइन में कहें?
उनका सबसे बड़ा और शायद थोड़ा चौंकाने वाला तर्क ये है कि लैंगिकता कोई कुदरती चीज नहीं है जो हमेशा से इंसानों में मौजूद रही हो। ये एक सामाजिक और ऐतिहासिक रचना है।
मतलब आसान भाषा में कहें तो इसे समाज ने, इतिहास ने समय के साथ मिलकर घड़ा है, बनाया है।
अरे वाह, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी सेक्सुअल इच्छाएं या हमारी पहचान,
हाँ,
जैसे हीट्रोसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल, ये पहले से तय या दुनिया भर में एक जैसी नहीं है।
बिल्कुल नहीं। मोटियर कहती हैं कि ये जो कैटेगरीज है ना, स्ट्रेट, गे, लेस्बियन, ये सब असल में काफी नई चीजें हैं।
अच्छा, कितनी नई?
मुश्किल से पिछले 150-200 साल में ही ये विचार बने हैं, और इन्हें बनाने में खास ऐतिहासिक घटनाओं का, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की बहसों का, राजनीतिक आंदोलनों का, और समाज में शक्ति के जो समीकरण है उनका बड़ा हाथ रहा है।
असर से पहले कोई असली या कुदरती सेक्सुअलिटी जैसी चीज थी ही नहीं, ये तो भाई बड़ा रेडिकल विचार है।
हाँ, वो यही तर्क देती हैं। वो कहती हैं कि मेडिकल साइंस, कानून, साइकोलॉजी जैसी ताकतों ने ही वो खांचे या कैटेगरीज बनाई हैं जिनका इस्तेमाल हम आज खुद को और दूसरों को समझने के लिए करते हैं। और यहीं पर फूको का वो जरूरी आइडिया आता है जिसे मोटियर समझाती हैं कि शक्ति या पावर का काम सिर्फ दबाना या रोकना नहीं होता।
अच्छा,
तो फिर क्या होता है?
शक्ति तो सक्रिय रूप से चीजों को बनाती है, उनका उत्पादन करती है।
ओ, मतलब पावर सिर्फ ना नहीं कहती, वो हाँ तुम ऐसे हो ये भी तय करती है।
बिल्कुल सही पकड़ा। शक्ति ज्ञान बनाती है, नियम तय करती है, पहचाने गढ़ती है, और इसी तरह हमारे अनुभवों को कंट्रोल करती है, उन्हें एक परिभाषा देती है।
तो हमारा मकसद ये समझना है कि ये गे, स्ट्रेट जैसी कैटेगरीज बनी कैसे
और समाज को चलाने में इनका क्या रोल रहा है। चलिए इस गुत्थी को थोड़ा और खोलते हैं। मोटियर बताती हैं कि लैंगिकता का आविष्कार कैसे हुआ, वो दो नजरियों के बीच का फर्क समझाती हैं। एक है आवश्यकवाद,
एसेंशियलिज्म,
हाँ एसेंशियलिज्म, और दूसरा सामाजिक रचनावाद,
सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म।
राइट,
तो एसेंशियलिज्म, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मानता है कि लैंगिकता एक जरूरी अंदरूनी प्राकृतिक चीज है, जैसे हमारी आंखों का रंग,
कि वो हमारे अंदर है, बदली नहीं जा सकती।
हाँ, जबकि सामाजिक रचनावाद कहता है कि नहीं, लैंगिकता तो समाज और इतिहास ने मिलकर बनाई है, संस्कृति ने उसे आकार दिया है।
और मोटियर किधर है?
मोटियर साफ तौर पर सामाजिक रचनावाद के साथ खड़ी दिखती हैं।
और यहीं पर वो चौंकाने वाली बात आती है जो आपने पहले कही थी।
कौन सी?
कि 19वीं सदी के अंत से पहले लोगों की कोई लैंगिकता वाली पहचान नहीं होती थी।
सोचिए जरा।
हाँ,
मतलब कोई खुद को गे या स्ट्रेट नहीं कहता था।
तो फिर क्या था?
देखिए, समाज कुछ यौन कर्मों या कृत्यों को कंट्रोल जरूर करता था, जैसे धर्म या कानून के जरिए। सोडोमी या व्यभिचार के खिलाफ नियम थे।
हाँ, सुना है।
लेकिन किसी इंसान की पूरी पहचान उसकी सेक्सुअल इच्छाओं से नहीं जुड़ी थी। वो क्या करता था वो जरूरी था, वो क्या था ये सवाल नहीं था।
फिर क्या बदला? ऐसा क्या हुआ?
फिर 19वीं सदी के आखिर में सेक्सोलॉजी का जन्म हुआ।
सेक्सोलॉजी?
हाँ, रिचर्ड वॉनक्राफ्ट एबिंग, हैवलॉक एलिस जैसे शुरुआती सेक्स वैज्ञानिक आए। उन्होंने यौन व्यवहारों को पाप पुण्य की नजरिए से हटाकर मेडिकल और साइकोलॉजिकल घटनाएं मानकर उनका अध्ययन करना और उन्हें बांटना शुरू किया, क्लासिफाई करना शुरू किया।
और उन्होंने विकृतियों यानी परवर्जन्स की लंबी चौड़ी लिस्ट बना डाली।
एग्जैक्टली।
अच्छा, तो मतलब डॉक्टरों ने इसे एक तरह की बीमारी जैसा बना दिया।
हाँ, और यहीं वो बड़ा शिफ्ट आया, किसी काम को गलत बताने से हटकर किसी इंसान को ही उस काम के आधार पर परिभाषित करने तक।
उदाहरण देकर समझाइए जरा।
मिसाल के तौर पर, जो आदमी पहले समलैंगिक काम करते पकड़ा जाता उसे शायद पापी कहते थे, पर अब सेक्सोलॉजिस्ट की नजर में वो एक समलैंगिक यानी होमोसेक्सुअल बन गया।
जैसे वो इंसानों की कोई अलग ही किस्म हो।
हाँ, जिसकी पहचान ही उसकी ये कथित विकृति हो।
बाप रे, तो डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की इस बातचीत ने ही लैंगिकता को एक पहचान, एक स्टडी का सब्जेक्ट बना दिया।
बिल्कुल, इसी ने लैंगिकता को हमारी पहचान का एक केंद्रीय हिस्सा बना दिया। विशेषज्ञों की भाषा ने, आप कह सकते हैं, हमारी पहचान गढ़ दी।
इसके बाद मोटियर एक और दिलचस्प बात बताती हैं, फूको का हवाला देते हुए ही। वो दमनात्मक परिकल्पना यानी रिप्रेसिव हाइपोथेसिस की आलोचना करती हैं।
हाँ, वो आम सोच है ना कि विक्टोरियन जमाना यानी 19वीं सदी का अंत बड़े दमन का काल था।
हाँ, कि सेक्स के बारे में कोई बात नहीं करता था, सब चुप रहते थे।
लगता तो यही है।
लेकिन फूको और मोटियर कहते हैं असल में उल्टा हुआ।
उल्टा कैसे?
19वीं सदी में सेक्स पर बातों का जैसे विस्फोट हो गया था।
अच्छा, चुप्पी नहीं थी?
चुप्पी नहीं थी, बल्कि सेक्स के बारे में नए नए तरीकों से लगातार बात करने की जैसे एक मजबूरी सी पैदा हो गई थी।
कहाँ कहाँ?
डॉक्टर के क्लिनिक में, मनोचिकित्सक के पास, कोर्ट में, वैज्ञानिक किताबों में, हर जगह।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग ज्यादा आजाद हो गए थे सेक्स को लेकर?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो पॉइंट है, ये पावर की एक नई, ज्यादा चालाक चाल थी।
अच्छा।
फूको समझाते हैं कि पावर सिर्फ ना कहकर या दबा कर काम नहीं करती, वो उत्पादक भी है, प्रोडक्टिव है।
प्रोडक्टिव कैसे?
वो ज्ञान बनाती है, नियम बनाती है, और हमें एक खास तरह का इंसान बनाती है, सब्जेक्ट बनाती है। सेक्स के बारे में इतनी सारी बातें करके, उसका विश्लेषण करके, उसे कैटेगरी में बात कर, समाज लोगों को और उनकी जिंदगियों को ज्यादा बारीकी से कंट्रोल करने लगा।
अच्छा, तो ज्यादा बात करके ज्यादा कंट्रोल, ये कैसे काम करता है, मुझे थोड़ा और समझना है।
हाँ, फूको ने इसे जैव शक्ति या बायो पावर कहा। अब मकसद सिर्फ लोगों की आत्मा बचाना नहीं रह गया था।
तो फिर क्या था?
बल्कि पूरी आबादी की सेहत, सफाई, बच्चे पैदा करने की क्षमता, इन सब चीजों को मैनेज करना था।
हो, और लैंगिकता इस मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा बन गई।
एग्जैक्टली।
और ये नई चर्चा फैली कैसे, क्या तरीका था इसका?
मोटियर इसे फूको के विकृत प्रत्यारोपण यानी पर्वर्स इम्प्लांटेशन के आइडिया से समझाती हैं।
पर्वर्स इम्प्लांटेशन, ये क्या है?
मतलब जब सेक्स पर इतनी बातें होने लगीं, तो ध्यान उन लैंगिकताओं पर ज्यादा गया जो बच्चे पैदा करने या शादीशुदा जिंदगी से जुड़ी नहीं थीं।
अच्छा।
समाज जैसे जुनून की हद तक असामान्य या विकृत लैंगिकताओं को पहचानने, उन्हें अलग करने और उन पर नजर रखने में लग गया।
तो इस तरह सेक्स का मेडिकल साइंस के जरिए वर्गीकरण हुआ।
हाँ, एक तरफ सामान्य रख दिया गया यानी विषम लैंगिक, शादीशुदा, बच्चे पैदा करने वाली लैंगिकता,
और दूसरी तरफ
विकृतियों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी गई, समलैंगिकता, फेटिशिज्म, सैडिज्म, मैसोचिज्म वगैरह वगैरह।
और इसका असर क्या हुआ लोगों पर?
इसने लोगों को अकेला और कलंकित महसूस कराया,
स्टिग्मेटाइज किया। लेकिन यही एक विरोधाभास भी है ना?
हाँ बिल्कुल। क्या?
कि इसी वर्गीकरण ने उन लोगों को खुद को समझने के लिए एक नई भाषा भी दे दी जिन्हें विकृत कहा जा रहा था।
अच्छा, जैसे?
जैसे समलैंगिक कैटेगरी बनाने का मकसद भले ही उसे बीमारी बताना था, लेकिन इसी पहचान के आधार पर बाद में एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा हो पाया।
वाह, यानी कंट्रोल करने के चक्कर में अनजाने में विरोध की जमीन भी तैयार कर दी।
हाँ, भाषा और पहचान वाकई दो धारी तलवार है।
बिल्कुल। और फिर 20वीं सदी में आई यौन पहचान की राजनीति, जिसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं।
हाँ, शुरुआती गे राइट्स मूवमेंट, खासकर 1969 के स्टोन वॉल दंगों के बाद, वो अक्सर इसी आवश्यकवादी सोच पर टिके थे। हम ऐसे ही पैदा हुए हैं, बॉर्न दिस वे।
हाँ, ये कहना कि समलैंगिकता प्राकृतिक है, बदली नहीं जा सकती, ये राजनीतिक तौर पर बहुत असरदार रणनीति थी उस वक्त।
इससे उन्हें अल्पसंख्यक अधिकार मांगने और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा मांगने में मदद मिली।
एक मेडिकल बीमारी को एक तरह से एक जायज पहचान में बदल दिया गया।
हाँ, मगर फिर 80s के दशक के बाद एक नई लहर आई।
कौन सी?
क्वियर थ्योरी की।
क्वियर थ्योरी?
हाँ, पोस्ट मॉडर्निज्म और फुको से प्रेरणा लेकर क्वियर सिद्धांतकारों ने इन पक्की स्थिर पहचानों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए।
क्यों? उन्हें क्या दिक्कत थी इन पहचानों से?
उनका तर्क था कि गे और स्ट्रेट जैसी कैटेगरीज भी तो उसी पावर सिस्टम की देन है जिससे वो लड़ना चाह रहे थे।
ओ, मतलब ये भी उसी सिस्टम का हिस्सा है।
हाँ, तो क्वियर राजनीति का मकसद इन बंटवारों को ही खत्म करना था,
सिर्फ गे पहचान को समाज में जगह दिलाने के बजाय।
उन्होंने नॉर्मल क्या है इसी विचार को चुनौती दी।
और क्या किया?
उन्होंने लैंगिक तरलता यानी फ्लूइडिटी, अस्पष्टता और किसी भी लेबल को नकारने का जश्न मनाया।
मतलब कैटेगरीज के बंधन से आजादी।
बिल्कुल, ये सामाजिक रचनावाद का एक और रेडिकल कदम था।
मोटे ये नारीवाद यानी फेमिनिज्म और लैंगिकता के पेचीदा रिश्ते पर भी रोशनी डालती हैं।
हाँ, वो 80 के दशक के नारीवादी सेक्स युद्धों के बारे में बताती हैं, फेमिनिस्ट सेक्स वॉर्स।
हाँ, ये क्या था?
नारीवादी सोच में एक बड़ा टकराव था ये।
हाँ, काफी दिलचस्प बहस थी।
एक तरफ कैथरीन मैकिनन और एंड्रिया डॉर्किन जैसे रेडिकल नारीवादी थे।
उनका क्या कहना था?
उनका कहना था कि मर्दों के दबदबे वाले समाज यानी पेट्रियार्की में औरतों की सेक्सुअलिटी पर असल में मर्दों का ही कंट्रोल होता है। उनके लिए पोर्नोग्राफी, BDSM, वेश्यावृत्ति जैसी चीजें औरतों की इच्छा की निशानी नहीं थी।
तो फिर क्या थी?
बल्कि मर्दों की हिंसा और औरतों को वस्तु समझने, ऑब्जेक्टिफाई करने का सबूत थी।
और दूसरी तरफ कौन थे इस बहस में?
दूसरी तरफ गेल रुबिन और कैरोल वेंस जैसे सेक्स पॉजिटिव नारीवादी थे।
सेक्स पॉजिटिव?
हाँ, उनका तर्क था कि पोर्नोग्राफी का विरोध करने वाले असल में पुराने शुद्धतावादी विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं,
कि औरतें सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो सकती हैं।
हाँ, या उनकी अपनी इच्छा नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमें हिंसा और सहमति से होने वाले सेक्स के बीच फर्क करना चाहिए
और
औरतों के सुख, उनकी इच्छा और यौन विविधता को एक्सप्लोर करने की वकालत करनी चाहिए।
तो मतलब लैंगिकता पर कोई एक नारीवादी नजरिया नहीं है, ये आज भी एक बहस का मुद्दा है।
बिल्कुल। और आखिर में मोटियर आज की लैंगिकता की समझ पर बात करती हैं, जिस पर पोस्ट मॉडर्न और क्वियर थ्योरी का काफी असर है। वो जूडिथ बटलर जैसे विचारकों का जिक्र करती हैं।
हाँ, बटलर और उनका प्रदर्शनशीलता यानी परफॉर्मेटिविटी का कॉन्सेप्ट।
बिल्कुल।
परफॉर्मेंस मतलब नाटक की तरह, ये थोड़ा समझना मुश्किल है।
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। बटलर कहती हैं कि लिंग यानी जेंडर और लैंगिकता कोई हमारे अंदर की पक्की चीज नहीं है।
तो फिर क्या है?
बल्कि ये उन कामों, इशारों और सामाजिक प्रदर्शनों का नतीजा है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं।
अच्छा,
हम मर्द या औरत, गे या स्ट्रेट पैदा नहीं होते। हम इन कैटेगरी से जुड़े नियमों का लगातार अभिनय करके उन्हें निभाकर ऐसे बनते हैं।
जैसे एक एक्टर स्टेज पे रोल निभाता है।
हाँ, कुछ वैसा ही। हम समाज में अपनी जेंडर भूमिकाएं निभाते हैं, परफॉर्म करते हैं।
ये तो दिमाग घुमा देने वाला विचार है। अगर ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस है तो इसका मतलब इसे बदला भी जा सकता है।
यही तो क्रांतिकारी बात है। ये नजरिया पहचान को पूरी तरह स्थिर कर देता है।
कैसे?
अगर लैंगिकता एक प्रदर्शन है तो इसे अलग तरह से भी प्रदर्शित किया जा सकता है ना?
हाँ।
ये चीजों को तरल बनाता है, फ्लूइड बनाता है, नॉन बाइनरी पहचानों के लिए जगह खोलता है और वर्गीकरण के पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़ा करता है।
कुछ टेकअवेज?
हाँ, कुछ मुख्य सूत्र हैं। सबसे पहला और बुनियादी, लैंगिकता प्रकृति कम सामाजिक ज्यादा है।
एसेंशियलिज्म बनाम सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म।
बिल्कुल, ये समझना कि ये कैटेगरीज बनी कैसे, ये पहला कदम है।
दूसरा?
दूसरा, शक्ति का खेल। पावर सिर्फ दबाती नहीं, बनाती भी है।
हाँ, वो ज्ञान, पहचान और नियम गढ़कर हमें आकार देती है, जैसा फुको ने बताया। वो तय करती है कि क्या नॉर्मल है और क्या नहीं।
तीसरा, लैंगिकता का आविष्कार। जिसे हम आज लैंगिकता कहते हैं, वो हमेशा से नहीं थी।
हाँ, उसे 19वीं सदी में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने एक कॉन्सेप्ट के तौर पर गढ़ा। इसका एक इतिहास है।
चौथा, वो काम से पहचान तक का सफर।
हाँ, पहले समाज सेक्सुअल कामों पर फोकस करता था, अब इंसान की पूरी पहचान ही उसके यौन रुझान से जोड़ दी जाती है, गे या स्ट्रेट।
और पांचवा, पहचान की राजनीति और उसकी सीमाएं। जहां गे या लेस्बियन जैसी पहचानों ने हक की लड़ाई में मदद की,
हाँ,
वहीं क्वियर थ्योरी ने इन पक्की पहचानों पर ही सवाल उठाए और इनसे आगे जाने की बात की।
मोंटियर के काम से कुछ ऐसे विचार हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे कुछ खास पंक्तियां हों या कोट्स।
बिल्कुल, पहला विचार जिसे हम उनके शब्दों का सार कह सकते हैं, लैंगिकता 19वीं सदी के अंत से पहले मौजूद नहीं थी। पहले यौन कृत्य थे, इच्छाएं थीं, पाप थे, लेकिन खुद की पहचान बताने वाली लैंगिकता नहीं थी।
ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान का ये तरीका कितना नया है।
दूसरा, एक और दमदार विचार। विक्टोरियन लोग सेक्स के बारे में चुप नहीं थे, वे इसके प्रति जुनूनी थे। उनका मकसद सेक्स को दबाना नहीं, बल्कि उसके बारे में खास सच बनाना था। ऐसा सच जिससे लोगों और आबादी को कंट्रोल किया जा सके।
ये दिखाता है कि पावर कैसे ज्ञान पैदा करके कंट्रोल करती है, चुप करा के नहीं।
तीसरा, समलैंगिक को एक खास तरह के इंसान के तौर पर गढ़ना एक बड़ा मोड़ था। इसने कुछ गलत माने जाने वाले कामों को एक अंदरूनी पक्की पहचान में बदल दिया।
ये दिखाता है कि कैसे मेडिकल भाषा ने एक पहचान बनाई जो बाद में राजनीति का हथियार भी बनी और विरोध का आधार भी।
हाँ, एक लेबल कैसे ताकत भी दे सकता है और कैद भी कर सकता है।
और चौथा, जो क्वियर थ्योरी से जुड़ा है, क्वियर राजनीति पक्की यौन पहचानों की धारणा को ही चुनौती देती है। ये पूछती है कि ये श्रेणियां गे, स्ट्रेट आदि मौजूद ही क्यों हैं।
ये हमें इन डिब्बों से बाहर निकलकर सोचने को कहता है। क्या हम पहचान के बिना जी सकते हैं?
ठीक है, ये सब तो बहुत गहरे और सैद्धांतिक विचार हो गए, लेकिन इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो ये हमें खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
कैसे?
हम खुद से पूछ सकते हैं, मैं जिसे नॉर्मल या नेचुरल मानता या मानती हूँ, वो सोच आई कहाँ से? क्या ये वाकई बायोलॉजिकल है, या मेरे समाज, मेरी परवरिश, मीडिया ने मुझे ऐसा सोचना सिखाया है? आत्मचिंतन।
सही बात है, और इससे शायद दूसरों के लिए हमारे मन में ज्यादा हमदर्दी पैदा हो सकती है, जजमेंट कम हो सकता है।
कैसे?
जब हम समझते हैं कि स्ट्रेट, गे, बाय जैसी कैटेगरीज पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि समाज और इतिहास की देन है, तो हम इंसानी सेक्सुअलिटी और जेंडर की विविधता को ज्यादा आसानी से स्वीकार कर पाते हैं।
हाँ, और ये खासकर आजकल जब भारत में भी ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी पहचानों पर इतनी बात हो रही है, तब ज्यादा जरूरी हो जाता है।
बिल्कुल, और हम मीडिया को ज्यादा ध्यान से देख सकते हैं, है ना?
हाँ, फिल्में, टीवी शो, विज्ञापन, खबरें, ये सब सेक्सुअलिटी को कैसे दिखाते हैं?
क्या वो पुरानी घिसी पिटी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं या कुछ नया सोचने पर मजबूर कर रहे हैं? कौन सी कहानियां बताई जा रही हैं और कौन सी छुपाई जा रही हैं?
हाँ, और ये हमें आज की सामाजिक और राजनीतिक बहसों को समझने के लिए एक बैकग्राउंड देता है।
जैसे LGBTQ+ अधिकार, सेम सेक्स मैरिज, स्कूलों में सेक्स एजुकेशन, सेंसरशिप।
हाँ, इन सब तर्कों के पीछे की राजनीति और इतिहास को हम बेहतर समझ सकते हैं,
और शायद रिश्तों में भी ये समझ काम आ सकती है।
कैसे?
ये जानना कि सेक्सुअलिटी स्थिर नहीं है, बदल सकती है, हमें अपने और अपने पार्टनर की इच्छाओं में समय के साथ आने वाले बदलावों को समझने और स्वीकार करने में मदद कर सकता है।
हाँ, इससे शायद बातचीत के नए रास्ते खुलें, ज्यादा समझदारी आए।
तो इस पूरी ज्ञान गोष्ठी से सबसे अहम सबक क्या लेकर जाएं हम?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि जिसे हम अपनी सबसे निजी अंदरूनी चीज समझते हैं, हमारी लैंगिकता, वो भी कितनी ज्यादा राजनीतिक और ऐतिहासिक है।
हाँ, हमारी भावनाएं भी समाज में चल रहे ज्ञान और शक्ति के बड़े खेल से जुड़ी हैं। कुछ भी पूरी तरह निजी या राजनीति से परे नहीं है।
बिल्कुल सहमत। और अगर तीन मुख्य बातें याद रखनी हो तो,
पहला, लैंगिकता दी हुई नहीं, बनाई गई है। ये कैटेगरीज आसमान से नहीं टपकी, इन्हें इतिहास में गढ़ा गया है।
दूसरा, शक्ति हमारी इच्छाओं को आकार देती है। पावर सिर्फ रोकती नहीं, वो भाषा, ज्ञान और पहचान बनाकर ये तय करती है कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे समझें और कैसे जाहिर करें।
और तीसरा,
इन बनी बनाई कैटेगरीज पर सवाल उठाना ही अपने आप में एक तरह की आज़ादी है।
हाँ, जब हम नॉर्मल, असामान्य, गे, स्ट्रेट जैसे खांचों को चुनौती देते हैं, तो हम इंसानी अनुभव को समझने और एक ज्यादा समावेशी समाज बनाने के नए रास्ते खोलते हैं।
वेरोनिक मोटियर का काम हमें यही आलोचनात्मक नज़र देता है।
हाँ, उनका काम हमें उन चीज़ों पर सवाल करने के हथियार देता है जिन्हें हमें हमेशा से प्राकृतिक मानना सिखाया गया है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम लैंगिकता के बारे में और ज्यादा आज़ाद और कम बंधे हुए तरीकों से सोच सकते हैं?
बिल्कुल।
और इसी सोच के साथ शायद एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाएं।
जरूर। तो सोचिए, अगर पहचान और लैंगिकता वाकई एक तरह का प्रदर्शन है जैसा बटलर कहती हैं, तो भविष्य में इसके कौन से नए रूप सामने आ सकते हैं जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? क्या पहचानें और भी तरल हो सकती हैं?
सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकलत फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।